उल्टी की शुरुआत एक छोटे से योग से करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा। कुटी के मध्य में विराजमान मैं एक तेजोमय आत्मा शरीर की सारी हलचल समाप्त, पुनः पुनः स्वयं को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करें। मैं आत्मा इस तन से निकलकर बाहर जाती हूं आकाश की ओर। ये देह यहीं छूट गया और मैं आत्मा अपने फरिश्ते से उड़ रही निलंबर सितार अंतरिक्ष में पहुंच जाती हूं सूक्ष्म आत्मा में अव्यक्त नाम ज्यादा सम्मुख है फरिश्तों की दुनिया में हूं बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर है भगवान का वरद हस्त मेरे सिर पर बाबा जन जन से तुम्हें ढूंढा और तुम मिले हो मौत करेंगे भगवान से इस ब्राह्मण जीवन में भी फिर से एक नए दिन की शुरुआत है एक नई शुरुआत। इस ब्राह्मण जीवन में अब तक जो किया जो हुआ उन सबको कल्याणकारी जान पुनः स्वयं के जीवन में फिर से वही तपस्या फिर से वही पुरुषार्थ में तीव्रता आज मैं पुनः लाने का दृढ़ संकल्प करता हूं। बाबा मुझे देख रहे हैं और मुझे तिलकते रहे हैं विजय नीचे उतरता इस धूल देह में प्रवेश करता है। एक नई ताजगी है, एक नया अनुभव। नव दिवस की नव शुरुआत, नव युग की यह स्वर्णिम घड़ी और इसी उमंग के साथ मैं आत्मा आज की इस अड्डी की शुरुआत करती हूं। वातावरण में संपूर्ण मौन, संपूर्ण ध्यान स्व की ओर, एक गहरी अंतर्मुखता। ओम शांति। कभी एक सूफी फकीर किसी गांव से गुजर रहा था और उस गांव में आकर वो पाता है कि एक बूढ़ी माता, सुबह का समय था, सूरज अब निकला था और एक बूढ़ी माता सुबह का घर का कचरा जो था वो सारा कचरा एक टोकरी में भरकर भगवान की जो मूर्ति थी उस पर चढ़ा रही थी। तो उस सूफी फकीर ने उसे कहा, ए माई तुम क्या करती हो, लोग भगवान के ऊपर तो फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, तुम ये क्या चढ़ा रही हो, कचरा। वो बूढ़ी माता कहती है, मैं भगवान की भगत हूं और मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ उसके चरणों में स्वाहा करती हूं। फिर मैं ये कैसे करूं कि मेरे पास यदि कचरा भी है तो वो भी मैं उसके चरणों में उसके ऊपर स्वाहा न करूं। वो सूफी संत उसे समझाता है, उसे बताता है कि ऐसे नहीं किया जाता है, भगवान की भक्ति ऐसे नहीं की जाती है, भगवान पर तो फूल मालाएं चढ़ाई जानी चाहिए। पर वो बूढ़ी माता कहती है, मैंने तो इतना ही सीखा है कि मेरा जो भी है, मेरा जो सर्वस्व है, वो मैं प्रभु के ऊपर चढ़ा दूं। वो सूफी संत उसे बहुत समझाता है पर वो नहीं समझती। वो सूफी संत घर जाता है और रात में एक स्वप्न देखता है। उस स्वप्न में वो देखता है कि वो स्वर्ग लोक में पहुंच गया है, सामने भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सुबह का समय है, सूरज अब निकला है और वो सूफी संत भगवान के सम्मुख है, सभा लगी हुई है और थोड़े ही देर बाद पाता है कि एक कचरे की टोकरी भगवान के सर के ऊपर गिरी। भगवान कहते हैं, ये मेरी भक्त कभी नहीं सुधरेगी। सूफी संत कहता है, मैं उस माता को, उस बुढ़िया को जानता हूं, मैंने उसे समझाया भी था कि भगवान के सिर पर इस तरह कचरे की टोकरी नहीं डाली जाती है, परंतु वो मानी ही नहीं। भगवान मौन हो गए। वो सूफी संत शाम तक वहां बैठा रहा भगवान के दरबार में और देखा कि जो सुबह जो टोकरी गिरी सिर पर कचरे की, उसके बाद कुछ भी नहीं गिरा। उसे आश्चर्य लगा। उसने भगवान से कहा कि सारे दिन भर न मालूम कितने लोग हैं संसार में, इस पूरी पृथ्वी पर, जो तुम्हारी आराधना, तुम्हारी वंदना, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, और न मालूम क्या क्या तुम्हारे सिर पर डालते हैं, फूल डालते हैं, मालाएं डालते हैं, मिष्ठान डालते हैं, वो सब कहां है। भगवान कहते हैं वो डालते तो सही परंतु आधा आधा, वो डालते तो सही परंतु झूठा झूठा, वो डालते तो सही परंतु उसमें स्वार्थ है, वो डालते तो सही परंतु परमात्मा प्रेम की वह पवित्र खुशबू उसमें नहीं है, वह सुवास उसमें नहीं है। उस सूफी संत की नींद अचानक टूटती है, अचानक वो उठता है, उसका दिल धड़क रहा है और कहता है मेरा भी तो समर्पण ऐसा ही है, अधूरा अधूरा, आधा आधा, टुकड़ा टुकड़ा। समर्पण जब तक समग्र ना हो, पूर्ण ना हो, संपूर्ण ना हो, तब तक उसे स्वीकार भी नहीं किया जाता। क्या ऐसा ही समर्पण हमने किया है? क्या संगम युग पर जब भगवान आया, क्या हमने भी स्वयं को संपूर्ण स्वाहा किया है? शायद नहीं। यदि किया होता तो जीवन में जो दुविधा है और जो समस्या है और जो दुख है और जो पीड़ा है और जो दर्द है और जो बार बार होने वाली वेदना है शायद न होती। फिर से योग युक्त होकर बैठेंगे और एक पल में बाबा के सामने स्वयं को संपूर्ण समर्पण कर देना है, समग्र समर्पण, इंटीग्रेटेड सरेंडर। बहुत सारी मुरलियां सुनी, बहुत सारी क्लासेस सुनी, बहुत सारी शायद योग की भट्टियां भी की, कई बार भगवान से मिलन भी मनाया, कई बार मधुबन में भी गए, रोज मुरलियां सुनते भी है, सेवाएं भी अनेक प्रकार की है, फिर भी जीवन में कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ पा लिया फिर भी कुछ कुछ अन पाया है। तब तो मिल गया, फिर भी कुछ तो है जो अब भी अनमिला है। सब किया परंतु फिर भी हृदय तृप्त नहीं हो रहा है, क्या है वो और कब होगा वो हृदय तृप्त? कौन सी प्यास है आत्मा की? कि मुरलिया सब पता है, सारी पॉइंट्स डायरी में और पुथी में भी है, और फिर भी एक अज्ञात अतृप्ति है। तो उस नवीनता की हम कुछ बातें आज सुनेंगे और सुनते सुनते ही उन पर चिंतन भी करेंगे, उनका मनन भी करेंगे। जितनी एकाग्रता से यहां बैठेंगे उतना ही गहरा अनुभव भी होगा। केवल सुनना नहीं है, केवल शब्दों को पकड़ना नहीं है, परंतु शब्दों के बीच और वाक्यों के बीच जो अंतराल है, जो समय है, उसमें स्वयं को देखना भी है, स्वयं का आत्मनिरीक्षण भी करना है। इसलिए जिसके पास भी मोबाइल है वो कम से कम कुछ घंटों के लिए या तो बंद कर दे या उसे पूर्ण मौन कर दे। जिनका भी मोबाइल चालू है कुछ समय के लिए क्योंकि परम सत्य मौन में ही पाया जा सकता है क्योंकि परम सत्य का अनुभव आवाज में नहीं हो सकता। अनुभव के लिए मौन आवश्यक है, अनुभव के लिए निश्शब्दता आवश्यकता है। तो इस जीवन में वो नई सुबह आ जाए, वो ज्ञान की, प्रकाश की, वो पवित्रता की, वो सत्य की, वो अनुभूति की नई किरण आ जाए, उसके लिए हम 21 ऐसी अलग अलग बातें देखी। कौन कौन सी बातों में हमें इस जीवन में नवीनता लानी है? नवीनता लाना है, नवीनता चाहिए, क्योंकि यदि एक ही चीज बार बार करी जाए, एक ही चीज यदि बार बार सुनी जाए, एक ही चीज यदि बार बार पढ़ी जाए, देखी जाए, तो उसका रस धीरे धीरे कम होने लगता है। चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज हो, तो इस जीवन में नवीनता आ जाए उसके लिए ऐसी 21 बातें हम देखेंगे। उन सभी 21 बातों में रोज ये लक्ष्य रखना है कि कुछ न कुछ नवीनता हो, कुछ न कुछ नयापन हो, वही 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 ना हो, क्योंकि आत्मा थकती है कर्म से नहीं, सेवा से नहीं, परंतु अपने ही व्यर्थ से। सबसे पहली बात, संकल्प, एक ही संकल्प, एक ही पैटर्न विचारों का यदि लंबा समय तक चलता रहे तो व्यक्ति धीरे धीरे उसका स्वरूप बनते जाता है। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं उदास हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, यहां पर सब दुख देने वाले हैं, यहां पर कोई भी ठीक नहीं है, सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों, एक विचारधारा है, दुख की विचारधारा। यही विचारधारा यदि लंबा समय तक चले तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने अवचेतन मन में उसे स्वीकार कर लेता है और उसका स्वरूप बन जाता है। सभी स्वार्थी है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये ऐसे ही लोग हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं, ब्लेम गेम, दो चीजें हमेशा व्यक्ति करता है, एक तो दूसरों को दोष, ब्लेम गेम, या तो खुद को दोष, जिसको कहा जाता है सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को दोषी ठहराना और दुखी होना, मेरी वजह से हुआ है, ये दोनों ही विचारधाराएं व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। अभी अभी अव्यक्त बाबा की मुरली चली थी, तीन चीजें तुम्हें परेशान करती है, चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार। स्वयं के विचारों को भी साक्षी होकर देखना, जैसे हम सड़क पर खड़े हैं और वहां से गाड़ियां जा रही है, जैसे आकाश हम हैं और उसमें बादल, विचारों के साथ जो तदात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन, उससे स्वयं को थोड़ा अलग करना, देखना ये है विचार। दुख का विचार आया और स्थिति दुखी, सुख का विचार आया स्थिति सुखमय। ये जो प्रभाव है विचारों का, संकल्पों का, कभी नहीं रुकता। परंतु हां, हम स्वयं को उससे अलग होने का अभ्यास करें। ये योग का प्रयोग नहीं है, परंतु साक्षी भाव का अभ्यास है। कल बाबा ने कल की साकार मूल्य में परिभाषा दी थी, निसंकल्प, निर्संकल्प स्थिति। यज्ञ के लिए यदि संकल्प चल रहे हैं, उन्हें भी निर्संकल्प ही कहा जाएगा। ये बहुत सुंदर परिभाषा थी। अपने विचारों में, संकल्पों में यदि नवीनता लानी है, तो सबसे पहले वर्तमान जो विचार चल रहे हैं, उनको थोड़े समय अलग होकर देखने का अभ्यास करना। कैसे करेंगे? एकांत में बैठकर, चाहे तो आंखें बंद कर केवल देखना। रोज थोड़ा समय, 5 मिनट, 10 मिनट, स्वयं स्वयं को साक्षी होकर देखना। और आप पाओगे कि जो संकल्प आ रहे कई सारे व्यर्थ हैं, शायद नकारात्मक भाव वाले हैं, शायद विकारों का अंश भी है। पहले डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट। क्वालिटी क्या है उनकी, उसको हम जाने, और फिर नए विचार लाए। और नए विचार कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? मुरली से। नए विचारों का स्टॉक हमारे पास चाहिए, शक्तिशाली विचार, पावरफुल विचार, ऐसे ऐसे संकल्प जो हमें किसी भी अवस्था में शक्ति प्रदान करें। ऐसे संकल्प अलग से लिख के रखने हैं। सारा खेल संकल्पों का है। बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में संकल्पों को एकाग्र करो। फिर से आज सुबह की साकार मूल्य में बाबा ने कहा है, शिव बाबा पिलर है। क्या है? पिलर। तो अलर्ट होके बैठेंगे और 1 सेकंड में याद की दौड़ी लगाते हुए आत्मा यहां से निकल कर जाए, पिलर को टच करेंगे और वापस नीचे, जो पहले टच करके आएगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है? यह है याद की दौड़ी। अलर्ट होके बैठ जाएंगे। मैं आत्मा इस तन से निकलकर, देह की इस दुनिया से पार, निर्वाण की ओर, पहुंच गई परम धाम। देख रही हूं शिव बाबा को, उस महाज्योति को, उस अविनाशी पिलर को, और मैं आत्मा उसको टच कर रही हूं, और टच करते ही अनंत शक्तियों की धाराएं मुझ में बह रही है। संपूर्ण पवित्रता का पद मुझ में आ रहा है। परम शांति मुझ आत्मा में प्रविष्ट हो रही है। उस महाज्योति का स्पर्श जैसा वो वैसी ही मैं, और उससे स्पर्श कर मैं आत्मा पुनः आ रही हूं नीचे दुकुटी के मध्य में स्थित। ओम शांति। सारे दिन भर बीच बीच में क्या अभ्यास करना है, मैं आत्मा यहां से निकलकर सीधा परमधाम गई, शिव बाबा को टच किया और वापस इस देह में आ गई, और जैसे ही टच किया वह इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, जैसे ही स्पर्श किया वह विद्युत संपर्क, उसकी सारी पवित्रता मुझ में समा रही है, उसकी सारी शक्तियां मुझ में आ रही है, उसकी सारी शांति मेरा स्वरूप बन रही है, और वापस इस तन में या संकल्पों में विलीनता तब आएगी जब बीच बीच में ये अभ्यास होगा, क्योंकि ये अभ्यास करने के बाद हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। क्या जिस आत्मा ने भगवान को हाथ लगा दिया क्या वो वही रहेगी? जिसे भगवान की दृष्टि मिल गई क्या वही साधारण रहेगी? जो असीम है वो, जो वो बेहद है, वैसे ही हम बन जाएंगे। तो पहला पॉइंट है संकल्पों में नवीनता, उसके लिए मुरली से नए नए पॉइंट्स ढूंढना, उसके लिए मुरली से नई नई ड्रिल्स का निर्माण करना, हर दिन हर मुरली से कम 5 नई ड्रिल या योग के प्रयोग हमको ढूंढने हैं, और हो सके जो लिख सके वो अपनी एक कमेंट्री लिखे। आज सुबह की मुरली, तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, तुम्हें किसी भी देहधारी से आसक्ति नहीं हो, तुम्हें किसी भी देहधारी पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हें किसी भी स्थूल वस्तु को भी याद नहीं करना है, तुम्हें इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। याद करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? देहधारी को याद यदि तुम करो तो क्या बन जाओगे? तुम्हारी दुर्गति होगी, पद भ्रष्ट होगा। बार बार मुरलियों में एक ही चीज कही है, देहधारी 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 को याद नहीं करो, याद तुम्हें केवल मुझे करना है। हमें बाइबल की एक बात बहुत पसंद आती है, ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल में लिखा है जहां भगवान कहते हैं आई थाय लॉर्ड एम अ जेलस गॉड, मैं जो कि तुम्हारा परमात्मा हूं बहुत ही ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त और किसी से प्यार मत करना, अगर किया तो देख लेना। आई गॉड थाय लॉर्ड एम अ जेलस गॉड, उसे पसंद नहीं है ही हु गिव्स टू गॉड सेकेंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। वह जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखता है वो उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखता। तो विचारों में नवीनता, संकल्पों में नवीनता तब आएगी जब मुरली की पॉइंट्स हम वहां से उठा लेंगे। भगवान ने कहा है किसी भी देहधारी पर बलिहार नहीं जाओ। क्यों? सोचना है। हर एक ने अनुभव कर लिया है क्या होता है देहधारियों को प्यार करके। सुर नर मुनि सबकी रीति स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। कोई है यहां पर जो निस्वार्थ स्नेह करे? क्या हम कह सकते हैं कि जीवन में हमने जिस जिस से प्रेम किया उससे कभी भी दुख नहीं मिला, उसने कभी धोखा नहीं दिया? सबकी यह रीति स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। मनुष्यों का प्रेम कभी भी निस्वार्थ नहीं हो सकता। दुख है उसमें, धोखा है उसमें, परंतु विडंबना यही है जिससे धोखा मिलता है। फिर उसी के प्यार में व्यक्ति अटकता है, फंसता है और फिर धोखा पाता है और कुचक्र चलते रहता है। कब ये कुचक्र छूटेगा? जब उसे ज्ञात होगा कि ये एक चक्र है, इससे बाहर निकलना है। ऐसे ऐसे संबंधों में और बंधनों में स्वयं को बांधे रखा है जैसे वो घोड़ा होता है एक जो कि पत्तियां खा रहा है, परंतु जिन झाड़ की वो पत्ती है उस झाड़ में बहुत सारे कांटे भी है, चुभ रहे हैं, पर पत्तियां खाना नहीं छोड़ता। पहली नवीनता लानी है संकल्पों में, दूसरी नवीनता है बोल में, वाचा में, वाणी में, शब्दों में। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी वाणी में परमात्मा प्रेम समाया हो, ईश्वरीय महावाक्य ही इस मुख से निकले? मुख की सार्थकता किसमें है? किसमें है? संसार का चिंतन करने में। आज सुबह कहा है झरमोई झरमोई में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। मुख की सार्थकता है ईश्वरीय वाक्यों का उच्चारण करने में। क्या हम कर रहे हैं? उसके लिए हो सके तो आपस में 3, 2, 4 कितने भी भाई या बहन आपस में छोटा सा संगठन हो और उसमें रात को सोने से पहले या शाम को ज्ञान की चर्चा करें। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है ज्ञान की चर्चा करना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ज्ञान सुना, ज्ञान सुनाया, ज्ञान लिखा वो अलग बात है, पर क्या हम चर्चा कर रहे हैं? क्या वो महावाक्य हमारे मुख से निकल रहे हैं? और यदि नहीं निकल रहे तो ये वाणी है, ये भी कभी भी उस कड़वाहट से बाहर नहीं आएगी। वाणी में नवीनता लाना अर्थात भगवान के महावाक्यों का उच्चारण करना अर्थात दूसरों को महावाक्य सुनाना, आपस में बैठना और डिस्कस करना कि आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा और क्यों कहा। प्रश्न पढ़ना परंतु उत्तर न पढ़ना, उत्तर खुद निकालो। एक एक लाइन जो है इतनी पावर है उसमें, इतनी शक्ति है उसमें। यदि एक ही लाइन का, एक ही वाक्य का यदि स्वरूप बन जाए तो स्थिति कहीं से कहीं चली जाएगी। इसके लिए वाणी में नवीनता लाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान का मुख से निकलना बहुत बहुत जरूरी है। यदि कोई भी नहीं है तो क्या करेंगे? फिर किसको सुनाएंगे? स्वयं स्वयं से बातें करेंगे। तीन चीजें हरेक को रोज करनी है, हरेक को लिख के रखना है ये तीन बातें। एक, भगवान से बात करना, दूसरा स्वयं से बात करना, और तीसरा ज्ञान का चिंतन मनन करना। वो गाय जो उगाती नहीं है, वो गाय जो खाती तो है परंतु उगाती नहीं है, उसे क्या कहा भगवान ने? वो बीमार है, वो हेल्दी है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया बीमार है। तो इस सभा में जो जो बीमार है वो हाथ खड़ा करेंगे। इंद्र सभा है, इंद्र सभा। जो विचार सागर मंथन नहीं कर रहे, केवल सेवा केंद्र पर आ रहे हैं, डायरी खोल रहे हैं, महावाक्य मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद, बाजू में डायरी, तब तक मुरली सुनना, फिर मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे होने के बाद थोड़ा सा जागरण, फिर से डायरी खोलना, धारणा के लिए मुख्य सार एक, धारणा के लिए मुख्य सार दो, वरदान स्लोगन डायरी बंद। अब सीधा कल मिलेंगे। कुछ कुछ माताओं को हमने देखा है सेंटर पर ही डायरी छोड़कर जाती है, फिर दूसरे दिन सीधा खुलती है। क्या इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है? जो ज्ञान का चिंतन नहीं कर रहे, ज्ञान का मनन नहीं कर रहे, वो सभी बीमार है। भगवान वाच सोचना है, शब्दार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है और गुणार्थ क्या है, चार चीजें हैं। शब्द शब्द का अर्थ क्या है, वाक्य वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य का गूढ़ अर्थ क्या है और उस वाक्य का भावार्थ क्या है। जो दिखाई दे रहा है शायद वो उसका अर्थ नहीं, कुछ तो गहन अर्थ है। भगवान क्या ऐसे ही कुछ कह देगा? राज विद्या राजगुयम पवित्र विदमुत्तम प्रत्यक्षावगमं तम्य सुसुखं कर्तव्यम। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, राज विद्या राजगुयम, राज विद्या जितनी गुह्य विद्या संसार में है उसमें भी गुह्यतम। गीता नौवां अध्याय प्रथम श्लोक, पवित्र विदमुत्तम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला ये ज्ञान है जो मैं तुझे सुना रहा हूं। इसलिए सुनो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 15 नवंबर 2003। कान खोल के सुनो, दोनों ही कान खोल के सुनना। देखा होगा सेंटर पर कई जगह लिखा हुआ है पवित्रता के विषय में जो मुरली है बाबा की, दोनों ही कान खोल के सुनना। तो बोल में पवित्रता तब आएगी, बोल में पवित्रता के प्रकंपन हो, विकार ना हो, टॉन्ट ना हो, गिराने का भाव ना हो, किसी को जले पर नमक छिड़कना, व्यंगवान कमेंट्स, हतोत्साहित करना, ये ना हो। शीतल रामायण में दिखाया है, जब जब लक्ष्मण को क्रोध आता है तो लक्ष्मण कुछ कुछ बोलता है और फिर राम के शब्द कैसे हैं? जल सम वचन बोले रघुनाथा, जल के समान उसके शब्द हैं, शीतल करने वाले। दूसरा परिवर्तन लाना है बोल में, जो बोल में कड़वाहट है, कठोरता है, वो केवल ज्ञान के जल से ही शांत होगी या निकलेगी। तीसरा, कर्म में नवीनता। कर्म में क्या नवीनता लाएंगे? श्रेष्ठ कर्म की 5 परिभाषा अलग अलग मूल्यों में बाबा ने दी है। महान कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म किसे कहा जाएगा? पहला, जो कर्म आत्माभिमानी स्थिति में किया गया है वो हर कर्म श्रेष्ठ है। दूसरा, वो हर कर्म भगवान की याद में किया जा रहा है वो कर्म श्रेष्ठ है। तीसरा, वो हर कर्म श्रीमत अनुसार किया जा रहा है वो कर्म श्रेष्ठ है। चौथा, वो हर कर्म जहां निस्वार्थ भाव है वो श्रेष्ठ है। और पांचवा, जहां निमित्त भाव है, कर्म किया परंतु उसमें मैंने किया यह भाव है। अभी नाटक देख रहे थे, भारत में कभी बिरला हुआ था जिसने बहुत सारे मंदिर बनाए, बिरला टेम्पल, उसके विषय में कहते हैं उसने शरीर छोड़ा वो भगवान के घर पहुंचा। भगवान ने पूछा, बोलो तुमने क्या क्या पुण्य किए हैं? वो कहता है मैंने मंदिर बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए। भगवान ने पूछा किसका मंदिर बनाया? उसने कहा लक्ष्मी नारायण का। भगवान ने पूछा नाम किसका दिया? बिरला टेम्पल। जो जो आ रहा है मंदिर में देख रहा है बिरला मंदिर, पुण्य कहां है? जो श्रेष्ठ कर्म हो वो निस्वार्थ हो और उसमें निमित्त भाव हो, ये नहीं कि मैं कर रहा हूं। जहां मैं की अकड़ है, जहां मैं का गर्व है, वहां पुण्य तिरोहित, वहां समाप्त हो जाता है। इसके लिए कर्मों में नवीनता लाना अर्थात और कर्म श्रेष्ठ बनाना अर्थात उसमें अधिक से अधिक श्रीमत हो, निस्वार्थ भाव हो, निमित्त भाव हो, आत्माभिमानी स्थिति हो और उसकी याद। अगर ये चीजें हैं तो कर्म श्रेष्ठ और कर्मों में नवीनता आएगी, नहीं तो वही कर्म, वही अमृत वेला उठ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, परंतु उस कर्म में ना तो बाप की याद है। आज सुबह की मुरली भोजन शक्तिशाली कब होगा? कब होगा? जब भगवान की याद में वो बनाया जाएगा। इस सभा में बाबा को भोग कौन कौन लगाता है वो सारी माताएं हाथ खड़ा करो जो रोज 24 घंटे में एक बार भोग लगाते हैं, और बाकी नहीं लगाती। क्या भगवान को अपना बेटा नहीं बनाया? बनाया तो बेटे को भूखा। फिर पत्रम पुष्पम फलम तो यम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। हे अर्जुन, यदि कोई अनन्य भाव से और प्रेम भाव से मुझे पत्र दे दे, पुष्प दे दे और कोई फल भी दे दे तो मैं उसे अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं। मुझे तुम्हारे 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। बाप वहां आते हैं जहां पर सूखी रोटी है परंतु प्रेम है। भगवान वाच साकार मुरली। हर कर्म योग युक्त हो, हर कर्म में परमात्मा याद हो, और सबसे बड़ा कर्म ब्राह्मणों का जो है वो भोजन बनाने का है, तो उसमें भी परमात्मा प्रेम के प्रकंपन समाये हुए हो, ताकि वो भोजन जो खाए उसके हृदय में ईश्वरीय प्रेम का अवतरण हो जाए। भाइयों में से भोग कौन कौन लगाता है? भाइयों में से भोजन कौन कौन खुद अपना बनाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए सबसे एक तालियां सबकी तरफ से। स्वयं का भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसमें जो बल होता है, भगवान ने भी कहा है वह अद्वितीय होता है। तो सभी को, चाहे माता हो, चाहे भोजन बनाने वाले भाई हो, जो न बनाने वाली माताएं है वो बनाए और भोग लगाए, और जो नहीं बनाते वो कम से कम भोजन मौन में, ईश्वरीय याद में, समान में स्थित होकर स्वीकार करे। यह तीसरी नवीनता। चौथी नवीनता संबंध संपर्क की नवीनता। एक है संबंध, एक है संपर्क। लास्ट संडे की मुरली, जो संपर्क वाले हैं उन्हें संबंध मिला हो, घर 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 गीता पाठशाला हो, एक एक घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो, जैसे वहां देवस्थान है वैसे यहां भी देवस्थान हो जाए, तो जो भी हमारे संबंध में आए और जो भी हमारे संपर्क में आए उन्हें ये अनुभूति हो कि ये कुछ और लोग हैं, अल्लाह लोग हैं, इन्हें कुछ मिला है, हम कुछ और हैं। ऐसे नहीं कि उनके संपर्क में आ गए तो उनके जैसा ही हो गए, जैसे वो साधारणता में है, जैसे वो लौकिक बातें कर रहे हैं, वो जो संसार की बातें कर रहे हैं और राजनीति की बातें कर रहे हैं और फिल्मों की बातें कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की बातें कर रहे हैं, हम अपना सर्वस्व छोड़कर उनके साथ उनके ही जैसे हो जाए, क्या उनकी सेवा होगी? सेवा तो तब होगी जब हम अपनी धारणाओं में किसी भी परिस्थिति में कहां भी पक्के रहेंगे, जब वो हमको देखेंगे ये लोग ऐसे हैं तो स्वतः ही आ जाएंगे। और एक बात, हमारे संबंध और संपर्क ऐसे ना हो कि जिसमें काम विकार की बात आती हो, जिसमें वासना की दुर्गंध हो, चाहे वो ब्राह्मणों से संबंध हो या भावी ब्राह्मणों से जो संसार के लोग हैं, हमारे संबंध में पवित्रता हो, भाई भाई के संबंध में, बहन बहन के संबंध में, भाई बहन के संबंध में, ब्राह्मण ब्राह्मण के संबंध में, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के संबंध में, कहीं पर भी यदि उसमें इतनी घनिष्ठता आ गई है, इतनी फैमिलियरिटी बढ़ गई है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और दोनों ही भगवान की सेवाओं में समर्पण है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। अधीनता को मिटाना, लास्ट संडे की मुरली, तीन प्रकार की अधीनता, एक अधीनता है जो स्व प्रति अधीनता है, दूसरी संबंधों की प्रति अधीनता, तीसरी प्रकृति और ना परिस्थिति और प्रकृति। अगर एक भी अधीनता है तो संपूर्ण अधिकारी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इतने अधीन न बन जाओ किसी की कि हमारे मूड का रिमोट उसकी जेब में हो, वो दुखी तो हम दुखी, हमारे संबंधों में डिटैचमेंट हो, पवित्रता हो, घनिष्ठता ना हो, फैमिलियरिटी इतनी ना हो, इतनी ना हो कि हम डिपेंडेंट हो जाए, वो बच्चा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो सारे संबंध नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि वहां फिर दैहिक आकर्षण निर्माण होगा। पांचवा, चलन में नवीनता, चलन में नवीनता। पहला बताया संकल्प, दूसरा बताया बोल, तीसरा बताया कर्म, चौथा बताया संबंध संपर्क, पांचवा चलन। चलन ऐसी ना हो कि कोई देखे और कहे क्या तुम लोग ओम शांति में जाते हो और ऐसा करते हो। लोग तो देखते हैं, हम एक एक यज्ञ की ईंट है, यदि यहां से कोई जाए और सिनेमा हॉल के पास खड़ा हो जाए तो लोग क्या समझेंगे, ये सब लोग ऐसे ही। एक अच्छा उदाहरण तो नहीं है परंतु सत्य उदाहरण है, एक युगल दोनों ही ज्ञान में है परंतु आपस में पति पत्नी इतने लड़ते हैं, इतने लड़ते हैं कि बाहर वाले छुड़ाने आते हैं और कहते हैं कि आप ओम शांति में जाते हो और फिर भी लड़ते हो, और वो दोनों छुड़ाकर बाहर वाले छुड़ा कर जाते हैं, तो क्या यह हमारे यज्ञ की गरिमा है, महानता है? श्रेष्ठता है। हमारी चलन शूद्रों से ना हो, हमारी चलन में ऐसा कोई कर्म ना हो कि जिसमें अपवित्रता झलकती हो, हमारा कर्म कोई ऐसा ना हो जिसमें अत्यंत लौकिकता हो, जोर जोर से हंसना, हंसी उड़ाना, मजाक, वह मजाक जिसमें विकार की वायु हो, वो शेयरिंग मोबाइल से करना जो कि ब्राह्मण श्रीमत नहीं है, जिसमें नीचता झलक रही है, वो हमारी शालीनता महानता नहीं है। हमारे यदि हमारे संपर्क ऐसे है कि लग रहा है उस संबंध में ही बंधन है, काट दो उसे। कब तक चलाओगे उसको? कट द ब्रिज, ड्राउन द बोट एंड थ्रो द लैडर। अंग्रेजी के तीन शब्द है। पहला है कट द ब्रिजेस, अर्थात जैसे आर्मी में वो सैनिक होते हैं, आते हैं, बीच में खाई है, उधर जाना है, एक पुल डालते हैं ऊपर से, पुल को पार करने के बाद पुल को काट देते हैं ताकि वापस भाग के जाने का कोई अवसर ना हो। कट द ब्रिजेस, उस पुल से, उस संसार से इस संसार में आए हो, उस शूद्र जीवन से इस श्रेष्ठ जीवन में आए हो, अब पुल को काट दो। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, जिस नैया में बैठकर उस किनारे से इस किनारे में आए हो, अब नैया को डुबो दो ताकि वापस उस किनारे, वापस उस संसार में जाने का कोई अवसर ना हो। थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए हो, ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी फेंक दो ताकि वापस उतरने का संकल्प ना हो, वापस उसी शुद्ध जीवन में जाने का संकल्प ना हो। ऐसा जीवन में झलकता होगा वैराग्य हो, तो ही वो संबंध का बंधन टूट सकता है, नहीं तो उसी में फंसे हुए, उसी में रगड़ते हुए कैसे पुरुषार्थ करेंगे। स्वयं स्वयं को निर्बंधन बनाना, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। कोई दूसरा आकर निर्बंधन नहीं बना सकता। किसी के शब्द, किसी का भाषण, किसी की क्लास, किसी के वचन, कोई किताब नहीं कर सकते। ये कार्य हमें करना होगा, स्वयं को ऐसी शक्ति स्वयं में जागृत करनी होगी कि जो बंधनों में हम बंधे व्यक्तियों के भगवान के महावाक्य है, किसी भी देहधारी में आ सकती ना हो। पांच, पांच के बाद टोटल 21 बताने हैं, और दो, दो में पहला तन और एक धन, 5+2। इस शरीर में भी नवीनता, नवीनता का एक ही संकल्प है कि ये शरीर भोग और विलास के लिए नहीं है, ना तो हमारे और ना तो किसी और के, यह देह तपस्या के लिए है, सेवा के लिए है। इस देह से तपस्या ही और सेवा ही होनी चाहिए। देह ब्रह्मा ने हड्डियां हड्डियां अर्पण कर दी, क्या हमने किए? और भोग और विलास के लिए भी नहीं, ना तो इस पर किसी पुरुष का अधिकार है और ना ही किसी स्त्री का। देह उसके लिए है, जगदीश भाई जी एक कहानी सुनाते थे, एक कन्या किसी कुएं पर पानी भर रही थी, वहां से एक युवक आता है और वो युवक कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो कन्या कहती है पानी मैं दूंगी परंतु अंग से अंग ना लगे। वो कहता है मैं वचन देता हूं परंतु मुझे पानी दो। वो पानी पीता है, पानी पीकर चला जाता है, कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है, परंतु उनको पता नहीं होता है कि हमारी शादी हुई है या उससे हुई है इससे हुई है। माँ बाप शादी तय कर देते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो दोनों आमने सामने आते हैं, तब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। वो स्त्री कहती है, वो कन्या कहती है, अपना वचन याद रखना। अंग से अंग न लगे, अनटच्ड प्यूरिटी। गीता में लिखा है एक जगह, जो भी स्पर्श से उत्पन्न सुख है, इंद्रिय इंद्रिय से मिलकर जो सुख प्राप्त होता है, तुरंत दुख में परिणित होगा। वो हर सुख जो स्पर्श से उत्पन्न है, अंततोगत्वा दुख में परिवर्तन हो जाएगा। जो सुख भास रहा है, जो खींचता है दिन रात, मृत्यु शैया पर होता है व्यक्ति, फिर भी वंस मोर की कामना उसकी नहीं जाती। इस देह को मंदिर समझना, देह में नवीनता अर्थात देह को नए नए कार्य में लगाना ईश्वरीय सेवा के, धन की पवित्रता या धन में नवीनता। भगवान को वो ऐसा कोई धन नहीं चाहिए जो गलत मार्ग से प्राप्त किया गया है। भगवान वाच 86 की एक अव्यक्त वाणी है, परमात्मा तालाब गरीबों की बूंद बूंद से भरेगा। वो चाहता तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति संसार में है, उनको टच कर दिया होता, यज्ञ अपने आप चलता, पर वो नहीं कर रहा है। ये तालाब परमात्मा तालाब गरीबों की बूंद बूंद से भरेगा। इसके लिए धन और धन के पीछे ऐसा पागल नहीं हो जाना है कि पुरुषार्थ के लिए समय ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक पैसा पैसा पैसा, सुबह से लेकर रात तक आधा समय ट्रैवलिंग में जा रहा है। इतना भी उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है कि ना तो अमृत वेला हो रहा है, ना तो मुरली हो रही है, ना नुमा शाम का योग हो रहा है, बस पैसा पैसा पैसा। और अगर पूछा जाए तो कहते हैं बाबा के लिए, बाबा को स्थूल धन की जितनी आवश्यकता, इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की सूक्ष्म धन की आवश्यकता है। स्थूल सेवाधारी उसे अब नहीं चाहिए, उसे सूक्ष्म सेवाधारी चाहिए। सूक्ष्म सेवाधारी जो शक्तिशाली है, जिन जो तपस्वी है, जो योगी है, जो सारे विश्व को सकाश की सेवा देते देने की सेवा करते हैं, वो सेवाधारी उसे अधिक चाहिए। तुम्हारे पैसे से क्या करोगे? लियो टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी है जो हमें बहुत पसंद है। रूस में एक किसान था, बहुत गरीब। एक दिन उसके घर में एक दूसरा सन्यासी आता है, कहीं दूर से एक परिव्राजक, और वो कहता है तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए दूर उस भूमि पर जहां पर जमीन बहुत सस्ती है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? वो व्यक्ति, वो किसान रात भर सोचता है मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे तो जाना चाहिए। और सुबह होते होते, सुबह जब होती है, वो निर्णय कर चुका होता है कि मुझे ये सारी जमीन बेचकर, अपनी जो छोटी जमीन बेचकर नई जमीन लेने जाना चाहिए। वो वहां पहुंचता है दूसरे गांव में, और वहां पहुंचकर वो पूछता है उस गांव वालों से यहां की जमीन का भाव क्या है। वो लोग कहते जमीन का भाव, यहां जमीन मुफ्त में मिलती है, एक ही शर्त है, सुबह से लेकर शाम तक तुम जितना भागोगे वो सब जमीन तुम्हारी, केवल तुम्हें भागना है बस। वो इतना खुश हो जाता है, रात भर सो नहीं पाता, सोचता है कितना भागू और कितना न भागू। पकोम नाम होता है उस कहानी में उसका, पकोम। वो पकोम बेचारा रात भर सोचते रहता है। सुबह होती है, सारा गांव एकत्र हो जाता है, एक लाइन खींची जाती है, उससे कहा जाता है सूर्यास्त से पहले यहां आ जाना, और जितना तुम जमीन पर भागोगे वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। वो सुबह वहां पहुंचता है, गांव भी आ चुका, गांव वाले आ गए हैं और भागना प्रारंभ करता है, भागता है और भागता है। भागते भागते उसे भूख लगती है, सोचता है अगर रुक गया तो जमीन थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए अपने पास जो भोजन लाया रहता है उसको फेंक देता है और भागता है और भागता है और भागता है और भागते भागते फिर उसे प्यास लगती है, सोचता है अगर पानी पीने के लिए रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी, बाद में तो कितना ही पानी पीना ही है, पानी की बोतल फेंक देता है और भागता है और हाँफता है और भागता है और हाँफता है। दोपहर हो जाती है, सूरज सिर पे आ जाता है, सोचता है वापस लौटना चाहिए, क्योंकि शर्त थी कि सूर्यास्त तक वापस पहुंचना है, परंतु सामने की जमीन बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है, सामने की जमीन बहुत उपजाऊ उर्वर फर्टाइल, सोचता है थोड़ी सी ले लूं फिर वापस चला जाऊंगा और भागता है और भागता है और भागता है और भागता है। दो बज जाते हैं, अब सोचता है आपको वापस लौट नहीं चाहिए, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही सुंदर दिखाई देती है, थोड़ी सी अगर बन जाए तो बस, क्योंकि ऐसा मौका तो फिर वापस नहीं आएगा, और भागता है और भागता है। चार बज जाते हैं और फिर सोचता है अब तो वापस लौटना ही चाहिए, और फिर वापस लौटता है और तेजी से लौटता है, इतना तेज भागता है कभी आज तक भागा नहीं होगा, क्योंकि सूर्यास्त से पहले पहुंचना है, इतना तेज भागता है, एक जगह पहुंच जाता है, वहां से दूर गांव वाले दिखाई देते हैं, खुश होता है, परंतु उधर सूर्यास्त हो रहा है, इतना तेजी से भागता है कि बस उस लकीर के थोड़े से ही पहले धड़ाम से गिरता है, सूर्यास्त हो जाता है, मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया। क्या ये कहानी काली नहीं, क्या ये कहानी मेरी कहानी तो नहीं, क्या मैं भी ऐसा नहीं भाग रहा हूं, भगवान मिल गया उसके बाद भी भागे ही जा रहे, अब रुको, अब लौटना है, क्योंकि अब और भागे तो वापस नहीं लौट पाएंगे। भगवान कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए, और तुम कहते हो सामने की जमीन, ये सामने की जो प्लॉट है, ये जो कार है, ये मोबाइल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेटेस्ट। एक बार बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर आराम से प्रभु चिंतन करेंगे, दिन रात सेंटर पर सेवा करेंगे, पहले ये थोड़ा हो जाए, ये जॉब को पहले पूरा कर लूं। बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं, ताज तख्त पर तिलक सात सौगात में लेकर आया हूं, क्या अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राज योग की राहों में। आठवां पॉइंट बुद्धि और नौवां पॉइंट संस्कार। बुद्धि में नवीनता लानी है, बुद्धि में नवीनता के लिए उसे नया भोजन देना पड़ेगा, बुद्धि की नवीनता के लिए उसमें नए काम देने पड़ेंगे, बुद्धि के काम, बौद्धिक कार्य, उसे कुछ चिंतन के लिए रोज एक टॉपिक देना पड़ेगा और उस पर लिखना पड़ेगा, रोज मुरली से कुछ पॉइंट लो, कुछ पॉइंट्स को याद कर लो, तो क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है वो कहती है मुझे बिल्कुल काम मत देना, जो है वही ठीक चल रहा है, अगर किसी से कहो ये लो मुरली, ये है स्लोगन, इसको याद करो, वो कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा ये काम, ये हमारा काम नहीं है, ये छोटे बच्चे करेंगे, हम तो अभी हमारे बुद्धि में बैठते नहीं, हाँ पढ़ने को बोलो तो पढ़ लेंगे, वो लिखने का काम और चिंतन का काम और भाषण देने का काम नहीं करो, वो हमसे नहीं होगा, बुद्धि को कार्य में लगाना अर्थात बुद्धि में नवीनता लाना अर्थात उसको चिंतन में व्यस्त रखना, सेवा की प्लानिंग बनाना। ये नहीं समझना ये तो सेंटर वालों का काम है, वो देखेंगे, हम भी तो सोचे, हम भी तो सहयोग दें, हमारा भी क्या योगदान है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, ये सेवा हो रही है, यहां ऐसा प्रोग्राम है, क्या हमारी बुद्धि में भी कोई पॉइंट आ रही है कि ऐसा भी किया जाए, कि हम भी अपनी तरफ से कुछ बता सकते हैं, या हमने दरवाजे ही बंद कर रखती है बस। बुद्धि में नवीनता, संस्कार, संस्कारों में नवीनता लानी है, पुराने संस्कार, नई आदतों का निर्माण, नए संस्कारों का निर्माण करना पड़ेगा, ईश्वरीय संस्कारों का निर्माण, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इस पर हम फिर आएंगे, आगे बढ़ते हैं। 5 + 2 + 2 + 4 अभी भाव भावना, भाव भावना, स्मृति, कल्पना और आदतें, ये चार चीजें हैं। या आदतें बाद में लेंगे, भाव, दूसरा स्मृति, तीसरा कल्पना और चौथा स्वप्न। इन चार चीजों में नवीनता लानी है। पहला हमारी भावना है, एक दूसरों के लिए हमारी क्या भावना है, शुभ है अशुभ है, क्या है? किसी ने हमको बहुत सताया है 10 साल तक, क्या करेंगे क्या करेंगे उसको, शुभकामना रखेंगे और वो सताते ही रहेगा और हम सहन करते रहेंगे कब तक अपने भावों में शुद्धि लाना है। किसके लिए? उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि हम खुद पीड़ित हैं। हमारे मन में यदि किसी एक आत्मा के प्रति घृणा है, नफरत है, कोई व्यक्ति आता है तो हमें बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है उसको देख कर ही, इसका मतलब भावनाएं शुद्ध नहीं है। वो इधर से आता है, हम इधर से, शायद भावनाएं ठीक नहीं, काम आंतरिक है, भावों को ठीक करना पड़ेगा, हीलिंग ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग को हील करना, शायद आहत हुए हैं, कईयों को क्षमा करनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, ये काम हमें रोज करना है। तब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। पता नहीं इस जीवन में और पूर्व जीवन में कितने लोगों को हमने दुख दिया है, कितनों को सताया है, कितना पीड़ा दी है आत्माओं को, हमें नहीं पता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। और जिन्होंने हमारे को बहुत सताया, अत्याचार किए, उनको माफ भी करना पड़ेगा। इसकी भी हम एक ड्रिल कल करेंगे। तो पहला भाव, दूसरा स्मृति, यादें, कौन सी यादें हम समाये हुए हैं, दर्द भरी, दुख भरी या ईश्वरीय स्मृति की, भाग्य की, क्या क्या मिला, क्या वो याद है कि क्या क्या नहीं मिला, उसी का चिंतन है। तीसरा कल्पना, इमेजिनेशन, आज के युग में एक विकार है सेंशुअल इमेजिनेशन। युवक संसार के जो कुछ चैनल्स में, टीवी में, मीडिया में दिखाया जाता है वो देखते हैं और फिर खुद कल्पना करते हैं। कामुक भाव, कामुक कल्पनाएं, और वो कल्पनाएं धीरे धीरे क्रिया में परिवर्तन होती है। अवसर की तलाश है, क्या हम सोच रहे हैं और क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या उसमें ईश्वरीय कल्पनाएं हैं, क्या हम कुछ सेवाओं की कल्पना कर रहे हैं, या फिर देह का ही चिंतन कर रहे हैं और देह की कल्पना कर रहे हैं, देह के भोग की कल्पना कर रहे, सेंसुअल एंड सेक्सुअल फैंटेसीज। बहुत बड़ा बढ़ता हुआ विकार है ये। संसार में जितने कुकर्म हो रहे हैं, सबसे पहले वो कुकर्म मन में होते हैं, सीधा नहीं होते। जेल में जो आज कितने लोग होंगे जो सजा काट रहे हैं, उनसे पूछो क्यों किया, पता चलेगा उनका बचपन। अगर ये पूछो बचपन में क्या करते थे, कौन सी आदत थे, कौन से गेम्स खेलते थे, क्या टेलीविजन में देखते थे, वहां उसका बीज है। जो भी हिंसा है संसार में, आतंकवादियों का इंटरव्यू दिया गया था कभी, उनसे पूछा गया था कि आप क्यों टेररिस्ट बने, उसका उत्तर उन्होंने नहीं बताया। उनसे पूछा गया बचपन में कौन से गेम्स खेलते थे, उन्होंने क्या छोटे वीडियो गेम्स मोबाइल में जिसमें मारपीट, वो इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, वो उसका गला काट रहा है, वो उसका गला काट रहा है, ये गेम्स उनको बहुत पसंद थे, वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, वो गेम्स जिसमें मारपीट हो, हिंसक। और वही सारे धीरे धीरे जाकर आतंकवादी बने। इतना गहरा बीज है। कल्पना। और चौथा है स्वप्न। हम स्वप्न में वही देखते हैं जो सारे दिन भर होता है। स्वप्न के भी कुछ प्रकार है, पांच प्रकार, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ स्वप्न दिन भर जो होता है उससे, कुछ स्वप्न जो दमन किया गया है दिन में उसके, कुछ स्वप्न इस जन्म के पास्ट से, कुछ स्वप्न पिछले जन्म के, सब मिलके वो स्वप्न आते। ऐसे कई सारे लोग हैं जो फोन करते कहते हम सारा दिन तो बहुत अच्छे रहते परंतु रात में विकार के स्वप्न क्यों आते हैं, हम सारा दिन बहुत अच्छे रहते रात में डरावने सपने क्यों आते हैं, सारे दिन भर अभ्यास करते हैं मैं आत्मा हूं परंतु रात में मृत्यु दिखाई देती है और भयभीत हो जाते हैं, क्यों? बीज है जरूर कहीं ना कहीं। कर्मों में नवीनता आएगी तो स्वप्न स्वतः ही नवीनता आ जाएगी स्वप्नों में, भावों में, भावना में, स्मृति में, कल्पना में और स्वप्न में, चारों ही चीजों में नवीनता लानी है। इसकी हम थोड़ी चर्चा और करेंगे आगे। फिर उसके बाद है दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें, चार चीजें। दृष्टि कैसी दृष्टि है, दैहिक है या आत्मिक है? यदि देखते समय बार बार देह ही दिखाई देता है तो फिर यह दिखाई देगा यह सुंदर है या सुंदर। देह की तरफ दृष्टि जाएगी तो देह खींचेगा, देह में विकार, मन में विकार उत्पन्न होगा। एक अव्यक्त वाणी 79 की, जिसमें बाबा ने बात कहा है कुमारों से, आज के बाद केवल और केवल मस्तक मणि को देखो। यदि इस देह को देखोगे तो देह सांप है और सांप में विष होता है, काटेगा। कल्पनाएं करता है व्यक्ति देह को देखकर, संकल्प चलते हैं देह के, लक्ष्य यहां आत्माभिमानी स्थिति का है और देह में ही फंस जाता है। जब देह में ही बुद्धि है तो कहां से अमृत वेला होगा, कहां ज्ञान का चिंतन होगा, कहां ज्ञान की वो ऊंचाई होगी, कहां वाचा में और वाणी में वह तेज होगा। दृष्टि, इस दृष्टि को परिवर्तन करना। क्या हम देख रहे हैं? नजर इस से बस ऊपर ही है, यहां हुई मणि और ज्योति। बाबा के मां वाक्य है, जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो तुम उस आत्मा को करंट देते हो, और जब जब तुम देह देखोगे, ये भी साकार महावाक्य है, तब तब तुम एक पाप करते हो। दोष न स्त्री का है, दोष न पुरुष का है, दोष उम्र का है। देह में धधकते हुए वासना के अंकुर है, जन्म जन्म के भोग के संस्कार आत्मा में, व्यक्ति अपनी उन वासनाओं को देखकर तृप्त करना चाहता है, परंतु जितना देखेगा और तृप्त करेगा उस विकार का स्वभाव है अतृप्ति, कभी भी तृप्त नहीं होता है। दृष्टि को पावन बनाना, दृष्टि को शुद्ध बनाना, दृष्टि को आत्मिक बनाना, फिर है वृत्ति। जैसे संकल्प होंगे वैसी ही वृत्ति होगी, संकल्प श्रेष्ठ, वृत्ति श्रेष्ठ। वृत्ति अर्थात मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता, अर्थात जो चित्त है उसकी तरंगे जो है, विचारों की तरंगे, उसे वृत्ति कहा है। चित्त वृत्ति निरोधा इति योग, पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है पहला ही श्लोक कि चित्त की इन वृत्तियों को वश में करना ही योग है। यदि संकल्प स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, तो स्वतः ही वृत्तियां भी शांत होने लगेगी, नहीं तो वृत्तियों का स्वभाव है बाहर भागना। वृत्ति में नवीनता, तीसरा है दृष्टिकोण में नवीनता, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, नजरिया। हर चीज के बारे में किसी का स्वभाव होता है निगेटिव ही देखना, सेवा की उसमें भी निगेटिव, कोई काम हो रहा है उसमें निगेटिव, कोई बहन उसमें निगेटिविटी, सब नेगेटिविटी देखना है, स्वभाव हो गया है, संस्कार बन चुका है निगेटिव देखने का, और यह समझना कि मैं जो समझता हूं वही राइट है। माया के दूर दो रूप, 2010 की मुरली, अक्टूबर, विदेशियों से मुलाकात। माया के दो रूप, एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं राइट हूं। अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाना, और चौथा है आदतें। एक बताया संस्कार, अभी बता रहे आदतें, इनमें भी अंतर है, कौन सा आप बताएंगे? आदतें और संस्कारों में क्या अंतर है? मतलब आदतें गहरी है या संस्कार गहरे हैं? फिर आदतें अभी की है, संस्कार पुराने जन्मों से आ रहे हैं, और गहरे कौन से? संस्कार। ज्यादा गहरा आदतें नहीं है संस्कार, तो आदतें गहरी नहीं है? आदतें भी तो गहरी है, आदतों भी तो कितनी गहरी होती है, दोनों ही गहरे हैं, दोनों ही चेतन मन में नहीं है, दोनों ही अवचेतन मन में है, परंतु अवचेतन मन, यदि चेतन मन एक भाग है, अवचेतन मन नौ भाग है, उन नौ भागों में भी सबसे गहरे संस्कार है, और उस अवचेतन में ऊपर ऊपर आदतें हैं, परंतु वो भी गहरे ही है, क्योंकि आदतें भी ऐसी नहीं छूटती है। आदत यदि बंद कर दो, आज से कोई चीज नहीं करो, जैसे साइकिल होती है, साइकिल चला रहे और फिर रोक दो, फिर भी चलता रहता है पेडल, मोमेंटम। उसी तरह अगर हम सोचे कि आज हम रोज जो सुबह 6 बजे उठता है, सोचे मैं 4 बजे उठूं, अपने आप 4 बजे उठेगा, फिर 6 बजे उठेगा, अपने आप आदत बन चुकी है। तो आदतें थोड़ी अलग होती है, आदतों पर भी काम करना है। मेरी ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो ईश्वरीय श्रीमद के विरुद्ध है, चाहे वो इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, वीडियो, घूमना फिरना, खाना पीना, क्या ऐसी आदत है जो कि बाधा है। विलियम जेम्स ने अपना एक अनुभव लिखा है, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट, कि मैं जब युवा था तो मैं एक दिन अपने मित्र के साथ खड़ा था एक चाय की टपरी में। उधर से एक व्यक्ति आ रहा था जो कि रिटायर्ड था आर्मी का। उसके सिर पर बहुत सारा बोझा था, वो चलते हुए आ रहा था। तो उसने लिखा विलियम जेम्स ने, मुझे लगा कि चलो देखते हैं, कुछ फिरकी लेते हैं इसकी। वो रिटायर्ड व्यक्ति था आर्मी का, जो 30 साल आर्मी में था और जिसके सिर पर बोझ था। तो वो जोर से चिल्लाता है, विलियम जेम्स अटेंशन। अटेंशन कहते ही वो आदमी जो कि अब रिटायर्ड है परंतु जो आर्मी में था, अटेंशन हो जाता है, सारा सामान गिर जाता है। गुस्से से वो आता है और उसको कहता है, क्या तुमने अटेंशन कहा? विलियम जेम्स कहता है, क्यों, इस देश में अटेंशन कहना पाप है? वो कहता है, पाप तो नहीं है ना तो अपराध है, परंतु मैं 30 साल तक आर्मी में था। अब आर्मी से रिटायर हो गए भी 20 साल हो गए, परंतु यदि मैं मर भी जाऊं और कब्र में भी दफन कर दिया जाए और कोई कहे अटेंशन, तो शायद निकल के बाहर आ जाऊं और अटेंशन हो जाऊं, क्योंकि आदत इतनी पक्की है। क्या ऐसा हो सकता है हम कुछ ऐसी पावरफुल आदतें बना लें कि हमको कोई उस आदत से हटाने की कोशिश करे तो भी हम ना हटे? ऐसी आदत पक्की हो जाए 3:30 बजे उठने की, अमृत वेला उठने की, कि कितनी भी परिस्थितियां कुछ ना आ जाए, रात को 2 बज जाए सोने के लिए, फिर भी आदत हमको उठाएगी। क्या ऐसी आदत बनाई जा सकती? क्या हमें चिंतन की ऐसी आदत हो जाए कि जहां पर भी कोई भी ईश्वरीय महावाक्य हम देखे और मन में ज्ञान का चिंतन चलने लगे? क्या हमें ऐसी आदत हो सकती है कि जिसको भी हम देखे उसे आत्मा ही देखे? वो भक्त भगवान को देखते थे सब जगह। प्रैक्टिस सिया राम उमई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी चुपानी। तो क्या ऐसी हम आदतें बना सकते हैं? ऐसी नई आदतों का निर्माण करना है। कैसे होगा? प्रैक्टिस से। कैसे होगा? पुनरुक्ति से। बार बार करते जाना, बार बार करते जाना, बार बार करते जाना, तब तक करते जाना जबकि रोआ रोआ श्वास श्वास स्वरूप बन जाए। तो ये 4 चीजें और अंतिम 4। पहला सुनना, दूसरा खाना, तीसरा लिखना और चौथा स्पर्श करना। ऐसी 21 बातें हैं ये। पहला बताया सुनना। क्या हम सुन रहे हैं? संसार की बातें, व्यर्थ बातें, संसार का निगेटिव मीडिया हमारे कानों में घुस रहा है। इस पार्टी ने क्या किया, उसने क्या किया, इस नेता ने ये कहा, उसके प्रत्युत्तर में दूसरा क्या कहने वाला है, उसकी उत्सुकता, पॉलिटिक्स का चिंतन। क्या ब्राह्मण इसलिए बने थे कि संसार की खबरें सुनते रहो और उसका चिंतन करते रहो? क्या हम सुन रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान की कथा के लिए जिनके कान समुद्र के समान है, ऐसे भक्त राम को प्रिय है। क्या भगवान के वचन सुनने के लिए ये कान आतुर है या संसार की खबरें, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, किस घर में क्या हो रहा है, किसकी ननद और किसकी बहू क्या कह रही है, क्या ये सुनने के लिए आतुर है? सुनना, श्रवण, श्रवण मनन निधिध्यासन, शास्त्रों में 3 चीजें लिखी है, पहले सुनना, फिर उसका मनन करना, फिर उसको अभ्यास में लाना। दूसरा खाना। क्या याद में खा रहे? क्या आसक्ति से खाया जा रहा है? क्या अर्पण किए बिना खाया जा रहा है? स्वाद मास्टर सर्वशक्तिवान की परिभाषा अव्यक्तवाणी में दी है बाबा ने। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे। रसेंद्रिय खींचती है व्यक्ति को, शब्द रूप स्पर्श शब्द गंध, रूप स्पर्श शब्द स्पर्श गंध। योगी अर्थात सबसे परे खाना। अगला लिखना, क्या हम लिख रहे हैं, कौन से मैसेजेस टाइप किए जा रहे हैं, या उसी में जीवन जा रहा है व्हाट्सएप पर। एक मैसेज इधर से जा रहा है, एक मैसेज उधर से आ रहा है, एक इधर से गया उधर से आया नहीं इसलिए बेचैनी। आएगा आएगा आएगा। इधर से फोटो भेजे जा रहे हैं, उधर से कोई रिस्पांस नहीं, अच्छे हैं या नहीं, हमने ये सेवाएं की और उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिख रहे हैं, क्या टाइप किया जा रहा है, उसमें विकार तो नहीं, उसमें आसक्ति तो नहीं, उसमें रूठना झगड़ना रूसना तो नहीं है लिखने में। क्या उसमें ईश्वरीय महावाक्य है या अपनी पर्सनल और लौकिक बातें चल रही है। ऊपर से ईश्वरीय संबंध, ऊपर से सेवा का संबंध और नीचे से मैसेजेस लौकिकता, रोमांस, कनिष्ठता। यदि अपनी वासनाओं को ईश्वरीय सेवा का नाम दे रहे हो तो व्याकरण को बदलने की आवश्यकता है। परमात्मा प्रेम और परमात्मा सेवा बहुत ऊंची चीज है। अपनी निम्न और शूद्र इच्छाओं को वो संज्ञाना दो। क्या हम लिख रहे हैं और लास्ट टच किस भाव से स्पर्श हो रहा है। टच स्पर्श, बाबा ने कह दिया है तुम्हारा आपस में एक ही संबंध है बहन भाई। किसी को भाई बनाने का संकल्प नहीं करो, विशेष भाई। किसी को बहन बनाने का संकल्प नहीं करो, विशेष बहन। किसी को मां बनाने का संकल्प नहीं करना, उस मां के संबंध में भी आसक्ति आ सकती है। स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक भाई था जिसने, जो कि सन्यासी, वो एक स्त्री को मां समझता था और उसके पास बार बार जाता था। उन्होंने लिखा है आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर्स। मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए जो आधे सन्यासी है और आधे गृहस्थी है। अगर जाना है तो आउट, उधर, इधर रहना है तो इधर। तो टोटल 21 बातें हैं। पहला पॉइंट बताया संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, धन, तन, संस्कार, बुद्धि, भावना, स्मृति, कल्पना, स्वप्न, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदतें, देखना, लिखना, सुनना, खाना और स्पर्श करना। इन 21 बातों में नवीनता लानी है, पवित्रता लानी है, रमणीकता लानी है, रचनात्मकता लानी है। तो अभी हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरी क्लास चालू करेंगे। ओम शांति।